ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय दो। अध्याय का नाम है असुर राज हिरण्यकश्यपु। श्लोक संख्या 35। असुर राज हिरण्यकश्यपु के उपदेश हम लोग सुन रहे हैं। असुरराज हिरण्यकश्यपु के उपदेश है। एवं विलपति नाम वे परिगृह्य मृतं पतिं अनिच्छतीनां निरहारं अर्कोस्तं संन्यवर्तत। एवं विलपति नाम वे परिगृह्य मृतं पतिं अनिच्छतीनां निरहारं अर्कोस्तं संन्यवर्तत। शब्दार्थ बोलिए। एवं इस प्रकार से विलपति नाम विलाप करती रानियों का वै निस्संदेह है परिगृह है अपनी गोद में लेकर मृतं मृत पतिं पति को अनिच्छति नाम ना चाहती हुई निर्हारम दाह संस्कार के लिए सबको ले जाते हुए अर कहा सूर्य अस्तम डूबने के स्थान में संन्यवर्तत चला गया। ये जो श्लोक पाठ किया है तो अंतिम जो पद है तो कितने लोगों ने बोला है कोस्तम संन्यवर्तत है। कितने लोगों ने बोला कोस्तम संन्यवर्तत है। कोस्तम है अर्कोस्तम होना चाहिए। हाँ, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो माँ है निरहारम तो माँ अब आधा हो गया ये और आ अलग हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अर्कोस्तम संन्यवर्तत है इस तरह से है और निरहारम अलग हो जाता है अर्कोस्तम तम निवर्तत। तो माँ है आधा माँ इधर चला गया निरहारम में और अर्कोस्तम आ अलग हो गया, ठीक है। अच्छा अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यद्यपि शव दाह के लिए समय उपयुक्त था लेकिन स्त्रियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रहीं और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि कथा प्रसंग क्या चल रहा है। तो कथा प्रसंग ये चल रहा है कि हिरण्यकशिपु इस समय भगवान विष्णु के प्रति बहुत विद्रोही हो गया है। भगवान विष्णु के प्रति बहुत विद्रोही हो गया है ना। और विद्रोह का कारण क्या है कि उसके भाई हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया है ना। मेरा भाई है चाहे गलत हो है? लेकिन भाई मेरा है इसलिए सही है। और जिसने मारा है मेरे भाई को वो मेरा शत्रु है ना। तो ये जो है मतलब भाव है असुरों का ये भाव रहता है। सही गलत जो भी हो जो कुछ मैं करूँ वो सही है और मेरा भाई है तो वो जो कुछ करे वो सही है। और कोई अगर मेरा विरोध करे मेरे भाई का विरोध करे तो वो गलत है वो मेरा शत्रु है ना। तो ये जो भावना है असुरों की है। तो इस भावना में जो है उसने बहुत मतलब असुरों को संगठित किया अपना यूनियन बनाया असुरों का देवताओं के विरुद्ध, देवताओं के पक्ष में विष्णु रहते हैं तो वो भी मेरे शत्रु, देवता लोग मेरे शत्रु हैं, देवताओं का पक्ष मेरे शत्रुओं का जो पक्ष लेगा वो मेरा शत्रु, तो ये जो है आश्रय भाव। लेकिन घर में जो है जो भाई की पत्नी है और माता अदिति शोक कर रही हैं पुत्र की मृत्यु के लिए, है तो उनको समझाने के लिए कि शोक करना व्यर्थ है, हिरण्यकशिपु जो है उनके शोक को दूर करने के लिए कथा सुना रहे हैं, है ना। और कथा में क्या उन्होंने बताया कि एक राजा सुयज्ञ नाम के एक राजा थे जिन्होंने शत्रुओं से युद्ध करते हुए शरीर छोड़ दिया है, तो अब युद्ध भूमि में ही उसकी पत्नी, राजा की जो पत्नियां हैं तो वे जो है राजा के मृत्यु पर शोक कर रही हैं, अपने पति की मृत्यु पर शोक कर रही हैं, है ना। तो शब्द बड़े सरल हैं, श्लोक के शब्द क्या हैं, एवं एवं मन इस प्रकार विलपती नाम, विलाप करती हुई राजा की स्त्रियां, कई स्त्रियां हैं एक नहीं कई स्त्रियां हैं, तो विलाप करती हुई, अब किस प्रकार विलाप कर रही थी वो पिछले श्लोकों में आ चुका है कि वो क्या क्या बोल रही थी, विलाप कर दी है। परिगृह है मृतम पतिम, परी का मतलब जानते क्या होता है, परी परी का मतलब चारों ओर से, गृह माने ग्रहण करके, मृतम पतिम मरे हुए पति को चारों ओर से ग्रहण करके, मतलब किसी स्त्री ने पति का गोद अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखा है, किसी ने दाहिना हाथ अपनी गोद में रखा, किसी ने बायां हाथ गोद में रखा, किसी ने दाहिना पैर गोद में रखा, किसी ने बायां पैर गोद में रखा है, तो इस प्रकार से चारों ओर से अपने पति को ग्रहण करके है परिग्रह, है ना। तो कम से कम पांच अंग तो हैं ही हैं, सिर और दो हाथ दो पैर, तो अपने अपनी गोद में रख करके मृतम पतिम अन्य क्षति नाम निर्हारम, अब निर्हार वो नहीं चाहती हैं कि हो, निर्हार माने दाह, पति का दाह संस्कार हो वो नहीं चाहती हैं, हैं। अर्कोस्तम तन सन्निवर्तते, और अर्क यानी सूर्य जो है अस्तम सन्निवर्त चले गए, सूर्य तो कुछ चले गए, सूर्य देवता थोड़ी इंतजार करेंगे, हैं कोई अगर किसी काम में देर लगाए तो सूर्य थोड़ी इंतजार करेंगे, तो अस्त हो गए, अस्ताचल को चले गए। तो यहाँ पर ये एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, और राजा की मृत्यु हो गई है, तो अब राजा का पुत्र है या नहीं है यहाँ तो नहीं बताया गया, तो मंत्रियों के पास अधिकार चला जाता है राजा का, और अब मंत्रियों के जो है द्वारा अब आदेश दिया जाता है कि अब क्या करना है, अगला कार्य क्या करना है, ये सब लोग तो अब भ्रमित हैं राजा के बिना, अब क्या करें क्या ना करें, तो मंत्री लोग ही जो है वो राजा का अधिकार लेकर के और फिर आदेश देते हैं कि क्या करना है, और फिर वे लोग निश्चित करते हैं कि अब आगे राजा कौन बनेगा। तो उन दिनों जो है मंत्री लोग ऐसे नहीं होते थे कि अधिकार को हड़प लें, राजा के अधिकार को हड़प लें, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होते थे मंत्री लोग, तो इसलिए वो कर्मों के जो है बंधन को जानते थे, कर्म के सिद्धांत को जानते थे, तो इसलिए कोई राजा नहीं बनना चाहता, और जिसको राजा बनना उचित है उसका वो विचार करके राजा बनाते हैं मंत्री लोग। और यहाँ पर मंत्रियों के सामने समस्या हो गई कि अब राजा नहीं है, राजा मर गए हैं, तो अब आदेश देने वाला कौन है, राजा की जो पत्नियाँ हैं, राजा की रानियाँ हैं, हैं तो वो अगर राजा के शरीर को अगर दाह संस्कार की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो मंत्री लोग भी जो है संकुचित हैं, और वे भी उनका विरोध नहीं कर सकते, और वो जो शोक कर रही हैं राजा की पत्नियां शोक कर रही हैं, तो उनके शोक को दूर करने वाला भी कोई नहीं है ना, तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, जो मंत्री लोग हैं उनके पास भी इतनी योग्यता नहीं है कि राजा की पत्नियों का शोक दूर करें, उनको समझाएं और राजा का दाह संस्कार कराएं, तो सूर्यास्त के पहले होना चाहिए। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद की। वैदिक प्रथा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दिन में मरता है तो उसका दाह संस्कार सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, रूपा जी बता रहे हैं, चाहे उसे जलाया जाए या गाड़ा जाए, है ना, जो भी हो संस्कार, अब वो दाह संस्कार हो या वो जो है गाड़ने का संस्कार, है ना, तो वो जो है सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। यदि वो रात्रि में मरता है तो अगले दिन प्रातःकाल दाह कर्म पूरा किया जाता है। अंतिम संस्कार, अब वो दाह संस्कार हो या गाड़ा जाए जो भी हो, अंतिम संस्कार मतलब होना चाहिए। ऐसा लगता है कि रानियां मृत शरीर के लिए जो लोष्ठवत था, लोष्ठवत मतलब मिट्टी के समान है ना, मिट्टी के समान था, शोक करती रही है और उसे जलाने के लिए नहीं दिया, जलाने के लिए नहीं दिया है ना। इससे मूर्ख व्यक्तियों में व्याप्त मोह का प्रबल बंधन स्पष्ट होता है, क्योंकि वे शरीर को आत्मा मानते हैं, है ना। प्रभुपाद जी जो है, देखिए ऐसे श्लोकों में जो है प्रभुपाद जी जरूर तात्पर्य देते हैं, जहाँ शरीर और आत्मा का अंतर की चर्चा होती है, प्रभुपाद जी बहुत तात्पर्य देते हैं अपने ऐसे श्लोकों में, है क्योंकि वे शरीर को आत्मा मानते हैं। सामान्यतया स्त्रियां कम बुद्धिमान हैं क्योंकि वे शरीर को आत्मा नहीं, कम बुद्धिमान मानी जाती हैं। सामान्यतया स्त्रियां कम बुद्धिमान मानी जाती हैं, केवल अज्ञानवश रानियां मृत शरीर को पति मान रही थीं और सोच रही थीं यदि शरीर रह जाए तो उनका पति उनके साथ रहा रह जाएगा, है ना। तो ये अज्ञान। आगे ऐसी धारणा निश्चय ही गोखर अर्थात गायों तथा गधों के लिए होती है। तो भागवत का एक श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा है सएव गोखरा, तो वो क्या है, गाय और गधा है, है ना, गाय और गधा। गो शब्द का जो प्रयोग है वो बैल के लिए भी होता है, गो शब्द का प्रयोग, तो अगर पुरुष है तो उसको बैल और गधा कह सकते हैं, अगर स्त्री है तो गाय और गधी कह सकते हैं, है ना। तो सएव गोखरा, हाँ, तो ऐसे धारण निश्चय ही गोखर अर्थात गायों तथा गधों के लिए होती है। हमने वास्तव में देखा है कि कभी कभी जब गाय का बछड़ा मर जाता है, रूपा जी बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, रूपा क्या कहते हैं, हमने कभी कभी देखा है, आपने भी देखा होगा क्या, कि कभी कभी जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो ग्वाले बछड़े के मृत शरीर को मढ़ा कर गाय के समक्ष प्रस्तुत करके उसे धोखा देते हैं, देखा है, हाँ, कितने लोगों ने देखा है, तो काफी देखा है कि बछड़े के जो है मृत शरीर को मढ़ देते हैं, उसके अंदर कुछ भर देते हैं भूसा वगैरह और खड़ा कर देते हैं, हाँ? इस तरह वो गाय जो वैसे दूध नहीं दुहने देती, बछड़े के मृत शरीर को चाटती है और दूध दुहने देती है। आप समझ रहे, बहुत अच्छा उदाहरण दिया रूपा ने, गाय जो है अपना बछड़ा समझ करके मेरा बछड़ा है, हैं, वो बछड़ा तो उसका मर चुका है, उसका शरीर के अंदर भर दिया है, हैं, कुछ भी भर दिया है घास, और गाय उसको चाट रही है और दूध दुहने दे रही है ना, और दूध दुहने देती है। इससे शास्त्र के वर्णन की पुष्टि होती है कि मूर्ख मनुष्य देहात्म बुद्धि के कारण गाय के समान होता है। आगे न केवल मूर्ख व्यक्ति तथा स्त्रियां शरीर को आत्मा मानती हैं, अभी तो हमने देखा है कि तथाकथित योगी का शव उसके शिष्यों द्वारा कई दिनों तक रखा रहने दिया गया, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उनके गुरु समाधि में हैं। यहाँ गुरुपा जी क्या बता रहे हैं कि एक योगी के शिष्यों ने भी ऐसा सोचा। अब योगी के शिष्यों ने कैसे सोचा, क्यों सोचा, उन्होंने सोचा होगा कि हमारे गुरु महाराज जो है योग अभ्यास में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हैं, और अभी उनके श्वास रुक गई है, जीवन के रक्षण नहीं है। कई 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 बार योगी ऐसा कर लेते हैं ना कि अपनी नाड़ी भी बंद कर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारे गुरु महाराज योग अभ्यास में बहुत आगे बढ़ गए हैं, हैं, और जीवन के लक्षण नहीं है, लेकिन वो जो है योगाभ्यास कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, कई दिनों तक रखा रहने दिया गया, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उनके गुरु समाधि में है। जब शरीर सड़ने लगा और दुर्गंध आने लगी, तब कहीं जाकर शिष्यों ने गुरु के शरीर को जलाने दिया, है ना। तो बाद में फिर उनको पता चला कि शरीर तो छोड़ चुके हैं, गुरु महाराज शरीर छोड़ चुके हैं, है ना। क्योंकि होता क्या है कि अगर आत्मा निकल जाती है शरीर से तो उसी समय शरीर नष्ट होने लगता है, है ना। तो आत्मा के कारण ही शरीर में जीवन के लक्षण होते हैं, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है उसी समय से शरीर नष्ट होने लगता है। आगे। इस प्रकार मूर्ख व्यक्तियों में देहात्म बुद्धि अत्यंत प्रबल होती है, जिनकी तुलना गायों तथा गधों से की जाती है। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक मृत शरीरों को प्रशीतित करने के फेर में हैं, जिससे भविष्य में इन प्रशीतित शरीरों को पुनः जिंदा किया जा सके। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत से बिंदु दे रहे हैं जिनमें की चर्चा की जा सकती है। ये क्या है? प्रशीतित। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक मृत शरीरों को प्रशीतित करने के फेर में है। प्रशीतित मतलब है, हिंदी के शब्द थोड़ा कठिन है। हाँ, प्रेजर्व नहीं, प्रशीतित के मतलब ठंडक में रखते हैं, शीत प्रशीतित करने के फेर में है। मतलब फ्रिज में रख दें तो शरीर ठंडा रहेगा तो खराब नहीं होगा। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रिज में रख देते हैं तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं ना, खराब नहीं होते हैं। तो शरीर भी है, अगर आप जो है ठंडक में रखेंगे तो काफ़ी समय तक खराब नहीं होते। खराब तो वो हो ही रहा है, वो तो कुछ है, खराब होने की जो गति है वो थोड़ा कम हो जाती है, है? अगर बदबू अगर उसमें मान लो एक दिन में अगर आने वाली है तो चार पाँच दिन तक नहीं आएगी, है? हाँ, तो उससे क्या है कि वो खराब होने की गति कम हो जाती है। खराब तो हो ही रहा है ना, वो आप नहीं रोक सकते कि वो खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, है ना। फ्रिज में सब्जियां हैं, फल हैं, रखते हैं तो क्या सड़ते नहीं हैं? सड़ते तो हैं, लेकिन कुछ दिन और चल जाते हैं तो सड़ने की जो गति है वो कम हो जाती है ना। लेकिन आप रोक नहीं सकते कि सड़ेगा नहीं। तो प्रमुख बात क्या कहते हैं, आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक मृत शरीरों को प्रशीतित करने के फेर में है ना। तो प्रभुपाद जी एक सिद्धांत को जो है निश्चित बतला रहे हैं, और वो क्या सिद्धांत है कि शरीर से अगर आत्मा निकल गई तो फिर ये शरीर जो है नष्ट हो। और आज के विज्ञान में इसकी कोई सूचना नहीं कि आत्मा कोई अलग चीज होती है शरीर के अंदर जो निकल जाए या आए। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें जो है प्रभुपाद जी हमेशा निंदा करते हैं विज्ञान की। प्रभुपाद ने जो है आज की शिक्षा की इसलिए निंदा की है। अब देखो कितनी शिक्षा जो है कितनी आगे बढ़ रही है और इसकी कितने कितने शाखाएं बनती जा रही हैं, अब तो शायद गिन भी नहीं सकते कितनी शाखाएं है ना। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आई आँख है तो आँख का ही जो है कितना मतलब अध्ययन हो रहा है, कान का कितना अध्ययन हो रहा है, शरीर की मतलब एक एक मतलब अंग का और अंदर के भी जो है हिस्से हैं कितना अध्ययन हो रहा है, कितना सूक्ष्म अध्ययन हो रहा है। लेकिन सब बेकार है, सब बेकार है। है? कि शरीर में जो आत्मा है जो जीवित रख रही है शरीर को, जिस कारण शरीर जीवित है ना, उसको वो नहीं जान रहे हैं, उसको नहीं जानते। अज्ञान का ही विस्तार, सब अज्ञान ही अज्ञान है। अज्ञानम यद तो अन्यथा, मनुष्य जीवन जो है व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। लेकिन अगर इसके साथ में अगर अध्ययन किया जाए तो उसका कुछ लाभ भी है इसके साथ में, है? जैसे कहते हैं जीरो जीरो जीरो, बहुत से जीरो हैं, कुछ है उसका अर्थ नहीं है। आप 10 जीरो रखते हैं, 50 जीरो रखते हैं और एक के बाद आप जीरो रखते हैं तो कितना महत्व तो बढ़ जाता है ना। उसी प्रकार से सब जो है जीरो हैं, इतने जीरो हैं, इनका कुछ अर्थ नहीं है कृष्ण भावनामृत के बिना। और कृष्ण भावनामृत के साथ में ये सब जीरो क्या होते हैं, बहुत काम के हो जाते हैं, बहुत इनका योग मतलब उपयोग है ना। तो प्रभुपाद ने जो है एक दिया है, इसलिए प्रभुपाद जी जो है विदेशों में प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा वहाँ कि आप लोगों के पास बहुत से जीरो हैं, बहुत से जीरो हैं, है ना। तो मैं आपको एक दे रहा हूँ कृष्ण भावनामृत, उसके बाद जो है आपके इन सब जीरो का जो है बहुत लाभ है, बहुत लाभ है कि नहीं। तो ये जो शिक्षा है ये सब जीरो 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 है ना। कितना डिपार्टमेंट है मतलब शिक्षा का, कितना अध्ययन हो रहा है एक एक चीज का, पौधे का अध्ययन हो रहा है, घास का अध्ययन हो रहा है, पत्ती का अध्ययन हो रहा है, कितना अध्ययन हो रहा है, ये सब जीरो है ना। तो प्रभुपाद जी मतलब इसे निंदा कर रहे हैं। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक मृत शरीरों को प्रसिद्धित करने के फेर में हैं, जिससे भविष्य में इन प्रसिद्धित शरीरों को पुनः जिंदा किया जा सके। बल्कि इन वैज्ञानिकों के चक्कर में कुछ धनी लोग थे जिन्होंने जिंदा ही अपने शरीर को रखवा दिया प्रसिद्धित। आप समझ रहे हैं, अभी तो उनको जीना था कुछ समय के लिए, लेकिन उन्होंने अपने जीवित शरीर को प्रसिद्धित रखवा दिया कि आपको जो है अभी आप सुरक्षित रख लो, आगे चल करके आपकी जो विज्ञान में कुछ विधि जब विकसित हो जाएगी तो हमको जिंदा कर देना है। तो जितना उनको आय जितनी आयु उनको मिली थी वो भी चली गई इस चक्कर में, लेकिन एक सिद्धांत है वो निश्चित है। भगवान कहते हैं वासान से जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि है ना, कि जो वस्त्र हैं आपके जो वस्त्र हैं है ना, तो इनको आकार तभी प्राप्त होता है जब आप पहनते हैं है ना, और अगर आप नहीं पहनते हैं तो ये आकार इनको कोई आकार नहीं प्राप्त होता है और खराब ही होंगे नष्ट होंगे। अगर आप नहीं पहनते हैं तो जो है कपड़ा है वो नष्ट होता रहेगा, खराब होता रहेगा, उसका कुछ उपयोग नहीं है ना। लेकिन जैसे आप पहनते हैं तो उसको आकार मिलता है, उसको जीवन मिलता है आपके वस्त्रों को। अब देखो आपके वस्त्र हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आपके वस्त्र हैं, नृत्य भी तो कर रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं है ना, जीवन मिल गया आपके वस्त्रों को है। आपने वस्त्र उतार दिए, पड़े हुए हैं और बस सड़ेंगे और नष्ट होंगे, उसका कुछ भी उसमें जो है कोई जीवन नहीं, निर्जीव है। उसी प्रकार से शरीर है ना, तो भगवान ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है ना। तो शरीर जो है आत्मा अगर छोड़ दिया, अगर उसी समय कोई दूसरी आत्मा आ जाए तो फिर शरीर जीवित हो जाएगा। तो ऐसे भी कई केस मिलते हैं है? कि एक जीव ने शरीर छोड़ा, दूसरा जीव आ गया उस शरीर में है ना, ऐसे केस मिलते हैं है ना। तो एक बार हमने पढ़ा था एक पत्रिका में, मासिक पत्रिका, वो मासिक पत्रिका थी है कल्याण नहीं, एक और ऐसे कल्याण में भी छपते रहते हैं ऐसे। तो एक बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, उसका कुछ नाम भी था, तो उसने शरीर छोड़ दिया और अचानक जो है वो जीवित हो गया, वो जीवित हो गया। तो एक मुसलमान जो है वो मतलब बोलने लगा कि मेरा नाम रमजान है, ये मैं वहाँ रहता हूँ, 12 साल के बच्चे में। और वो मुसलमान था 40 साल या 42 साल का था मुसलमान, वो तांगा चलाता था, वो तांगा चलाता था और वो जो घोड़ा को चना दे रहा था और पीछे से किसी ने चाकू मार दिया तो उसने शरीर छोड़ दिया है, और शरीर छोड़ करके वो इस बच्चे के शरीर में आ गया। अब वो जो है अपना सब परिचय देने लगा, और 12 साल का बच्चा, अब जो है वो अपनी अपनी पत्नी का नाम बता रहा, मेरी पत्नी उधर है, मेरा घर उधर है, अब सब जो है जो घर वाले परेशान, ये क्या बोल रहा है, ये तो जो है मतलब अच्छे धार्मिक परिवार का, हिंदू परिवार का था बच्चा है, वो अपना नाम बता रहा है, मेरी वो पत्नी है उधर, ये है वो है। तो फिर जो है पूछा कि तुम बताओ कौन है तुम्हारा घर, कौन है तुम्हारी पत्नी। तो ले गया अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी का परिचय दे रहा है, अब ये 12 साल का बच्चा है और उसकी पत्नी है 40 साल या 30-40 साल की उसकी पत्नी है, तो अपना परिचय दे रहा है वो। तो और सब परिचय बिल्कुल सही बताया, उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ ये मेरा पति ही है अब। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वो बताते हैं कि वो अपनी वो पहचान अब धीरे धीरे भूलता जा रहा है, धीरे धीरे भूलता जा रहा है और इस पहचान में आ रहा है। तो ऐसा भी मतलब होता है, केस होता है ना। और लेकिन अगर वो शरीर को जो है अगर आत्मा ने छोड़ दिया है, अब वो या तो वो खुद लौट के आए, वो जीवात्मा वो लौट के आए, या कोई दूसरी जीवात्मा आए, नहीं तो शरीर क्या है नष्ट नष्ट ही होगा, सड़ेगा, इसका कुछ और दूसरा उसकी और कोई दूसरी गति नहीं है, नष्ट हो गए। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, हिरण्यकशिपु द्वारा सुनाया गया ये ऐतिहासिक वृत्तांत लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ होगा। प्रभुपाद तो लाखों वर्ष कह रहे हैं क्योंकि हम लोग इतनी सोच पाते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये लाखों वर्ष नहीं है, बहुत ज़्यादा है। छठवें मनमंत्र में हिरण्यकशिपु हुआ था और ये सातवां मनमंत्र चल रहा है, तो सातवां मनमंत्र के भी जो है 12 करोड़ साल बीत चुके हैं। 28वां ये कलयुग चल रहा है, सातवें मनमंत्र का 28वां कलयुग चल रहा है। 43,20,000 साल में चार युग बीतते हैं, तो 28 से गुणा करेंगे आप तो करीब 12 करोड़ साल होता है, तो 12 करोड़ साल तो कम से कम हो ही गया। फिर वो जो छठवें मनमंत्र में जो है मतलब किस समय हुए थे तो उसके कितने और मतलब साल छठवें मनमंत्र के भी हुए हो चुके वो तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि एक मनमंत्र 30 करोड़ साल का होता है, तो 30 करोड़ साल के छठवें मनमंत्र में किस समय ये घटना हुई थी वो तो कोई जानता नहीं, लेकिन 12 करोड़ साल तो ये हो गए छठवें मनमंत्र को समाप्त हुए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ था ऐतिहासिक वृत्तांत, क्योंकि वो लाखों वर्ष पूर्व जीवित था और तब भी वो इतिहास का उदाहरण दे रहा था। तो हिरण्यकश्यप भी उदाहरण दे रहा है तो और पहले के इतिहास का उदाहरण दे रहा है। और एक बात और समझने की है कि हिरण्यकश्यप जैसे असुर जो सबसे ज्यादा असुर हैं, इनमें असुरी भाव है, इनके अंदर भी इतना ज्ञान है और आजकल के जो लोग हैं वो उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, उनके पास इतना भी ज्ञान नहीं है, आप समझ रहे हैं। मतलब कलयुग में कितना ज्ञान है, कलयुग की शिक्षा में आज की शिक्षा में कितना ज्ञान है कि पहले ये ज्ञान इतना सामान्य था, बच्चा बच्चा जानता था, आप समझ रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता था, यहाँ तक असुर तक जानते थे। हिरण्यकश्यप बोल रहा है, कंस भी जो है बोल रहा है कान लोकान वे गमिष्यामी, जब उसके हाथ से वो यशोदा की कन्या छूट गई आकाश में चली गई है, तो कंस ने जब देखा कि देव की वस्तु तो निर्दोष हैं, देव की वस्तु तो निर्दोष हैं और मेरा जो शत्रु है वो जो है कहीं और पैदा हो गया है, उस कन्या ने जैसा सूचना दी है? तो उसने ये भी सोचा कि देवता लोग झूठ बोलते हैं कि देव की वसुदेव के जो है देवकी का जो आठवां पुत्र होगा वो मेरी हत्या करेगा, लेकिन देवकी की आठवां पुत्र तो पुत्री हुई है ना, तो देवताओं ने झूठ बोल दिया। तो उसने नहीं सोचा देवता लोग झूठ बोलते हैं, वो खुद तो झूठ बोलता था लेकिन देवताओं के बारे में नहीं सोचा था कि देवता लोग झूठ बोलते हैं। आप उसने निष्कर्ष का देवताओं की झूठ बोलते हैं और मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब वो चिंता कर रहे हैं मैं किन लोगों को जाऊंगा, मैंने तो बहुत बड़े पाप किए। उसकी बुद्धि में जो है मतलब ये था कि भाई शरीर को छोड़ने के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती है, दूसरा शरीर मिलता है, कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, असुरों में भी जो है ये ज्ञान। तो अगर ऐसे आप विचार करें तो आज की शिक्षा, आज का कलयुग का जो जीवन है वो कितना अंधकार में, कितना अंधकार, आप समझ रहे, कितना अंधकार है। और अगर इसको नहीं मानते इस जीवन के बाद अगला जीवन है, मृत्यु के बाद अगला जीवन है, अगर इसको नहीं मानते तो कृष्ण भावनामृत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्या हो सकता है कृष्ण भावनामृत का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता? क्या हो सकता है कि मरने के बाद तो कोई जीवन नहीं है, ये तो भी आप कृष्ण के भक्त हैं, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो फिर कृष्ण की जो भक्ति है वो केवल एक भावुकता है बिना किसी आधार के, कि मृत्यु के बाद तो कोई जीवन नहीं है। अब कृष्ण अगर हैं भी या नहीं भी हैं तो उससे क्या फायदा, अगर हम नहीं रहेंगे, मृत्यु के बाद अगर हम नहीं रहेंगे तो कृष्ण अगर हैं या कृष्ण नहीं भी हैं, आगे चलकर कृष्ण रहेंगे या नहीं रहेंगे, हैं, उसका क्या कुछ अर्थ हुआ आपके लिए अगर हम नहीं रहेंगे तो? मान लीजिए कृष्ण से हमें बड़ा प्रेम हो गया, कृष्ण से हमारे मतलब काफ़ी कृष्ण हमारे साथ लीलाएं कर रहे हैं, कृष्ण से बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस जीवन के बाद कुछ नहीं है, कोई जीवन नहीं है, तो फिर क्या हुआ? फिर तो केवल एक मनोरंजन के लिए है कि भई आप मानते हो तो मानो, नहीं मानते नहीं मानो। अगर आपका मन बहल रहा है कृष्ण की भक्ति में तो मन बहलाओ। तो आज का जो है जो ये धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है इसी पर आधारित है कि मृत्यु के बाद तो कोई जीवन है नहीं, तो कोई भी धर्म है, कृष्ण की भक्ति हो या कोई भी भक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, जिसको मानते हो नहीं मानते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपका मन करता है और मनोरंजन हो रहा है आपका, तो आप करो इसको, करो। ये सब एक मनोरंजन की बातें हैं, धर्म का केवल एकमात्र फायदा क्या है? मनोरंजन। आप सुन, है ना? और अगर आपका धर्म में मनोरंजन नहीं हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो मत करो। इंद्रिय तृप्ति का तो ये मनोरंजन है ही है, इंद्रिय तृप्ति तो है ही है जीवन का, इंद्रिय तृप्ति करो, है ना? तो ये जो है मतलब बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगला जीवन है। अब आपने इंद्रिय तृप्ति की और गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध तरीके से इंद्रिय तृप्ति की, तो उसका कितना दंड आपको मिलेगा, कितना दंड भोगना पड़ेगा, है ना? तो ये जो है मतलब समझना है। लेकिन हाँ, प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, ये दूसरे प्रकार से पूछा था इसको, ये भी बड़ी समझने की बात है। किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि आप कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं, हैं, और अगर मान लो, अगर मान लो कृष्ण नहीं है, आप समझ रहे हैं, आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और मान लो कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण नहीं है, कृष्ण नाम की कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है कृष्ण नाम, हैं, तो फिर क्या मतलब फायदा है आपको? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, ये भी समझने वाली बात है कि कैसे कैसे प्रश्न किए गए और कैसे कैसे प्रभुपाद ने उत्तर दिए। हमेशा याद रखे जाएंगे प्रभुपाद ने जो उत्तर दिए। प्रभुपाद ने कहा कि अगर मान लो कृष्ण नहीं है, कृष्ण नाम की कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर मैं भक्ति करता रहूँगा, क्योंकि मुझे इसी में आनंद आ रहा है। कृष्ण का प्रसाद खाता हूँ, कृष्ण का कीर्तन करता हूँ, मुझे तो आनंद आ रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर मान लो कृष्ण नहीं भी हैं, तो भी हमें देखो कृष्ण के भक्तों का संग मिल रहा है और ये कथा सुन रहे हैं, हमें तो आनंद मिल रहा है, प्रत्यक्ष आनंद मिल रहा है। अगर नहीं भी है तो भी कोई घाटा नहीं है, इसमें कितनी रक्षा हो रही है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, है ना? हरि ओम। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये घटना हिरण्यकश्यपु के जीवन काल से पहले हुई होगी, किंतु देहात्म बुद्धि की वही अविद्या आज भी न केवल अज्ञों में अपितु वैज्ञानिकों में भी व्याप्त है, जो प्रशिक्षित सबों को पुनर्जीवित करने के बाद सोचते हैं। आगे, रानियां सबको जलाने के लिए इसलिए नहीं दे रही थी। अब एक दूसरा प्रभुपाद जी एक दूसरा विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या? रानियां सबको जलाने के लिए इसलिए नहीं दे रही थीं क्योंकि वे अपने पति के शव के साथ मरने से डर रही थीं। एक ये भी कारण है कि वो जलने क्यों नहीं दे रही थीं, हैं? क्योंकि एक जो शिष्टाचार है स्त्री के लिए वो ये है कि पति के साथ वो भी सती हो जाए, जल जाए, जीवित जल जाए पति के शरीर के साथ, है? तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, है ना? तो अब ये बड़ी लज्जा की बात है कि वे मतलब पति को जो है मतलब जलने के लिए दें और खुद ना जलने के लिए जाएं, है ना? तो ये बड़ी लज्जा की बात है। जो मतलब क्षत्रिय राजाओं की जो पत्नियां होती थीं, तो अगर वो गर्भवती है, अगर पत्नी गर्भवती है तो वो जो है पति के साथ जल नहीं सकती, तब उसको अनुमति नहीं मिलेगी कि वो जले, अपने शरीर को जलाए पति के साथ में। और नहीं तो शिष्टाचार के अनुसार स्त्री को जो है पति के साथ जल जाना चाहिए, जल करके अपना शरीर त्याग देना चाहिए और पति के लोक में जाएगी, है ना। और पति जो है बहुत पुण्यात्मा है, क्योंकि उसने जो है अपना शरीर त्यागा है। किस प्रकार से शरीर त्यागा है? शत्रुओं से युद्ध करते हुए, है ना। और शत्रुओं से युद्ध करते हुए शरीर त्यागा है, हैं? तो ऐसे में निश्चित रूप से उसको उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। तो स्त्री जो है अगर ऐसे पति के शरीर के साथ अगर आप जल करके शरीर छोड़ दे तो वो भी पति के लोक में जाएगी, उच्च लोक में जाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत ये जो है अच्छा अवसर होता है स्त्रियों के लिए, है ना। लेकिन अब जो है लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो निम्न वर्ग के जो लोग स्त्रियां होती थीं तो पति के साथ नहीं जलती थी। शूद्रों में मतलब ऐसा नहीं था, ब्राह्मण की स्त्री है वो सती होती थी, या क्षत्रियों की स्त्रियाँ सती होती थी, वैश्यों की स्त्रियाँ सती होती थी। शूद्रों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनमें देहात्म बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। और फिर शूद्रों में ये भी है कि अगर वो विधवा स्त्री है तो विधवा जो है किसी दूसरे पति से विवाह कर ले, तो ये भी जो है जैसे कि बाली की मृत्यु हुई तो जो तारा थी उसकी पत्नी, तो वो पति के साथ सती नहीं हुई, है ना। और फिर वो सुग्रीव की पत्नी बन गई, है ना। तो ऐसा है, रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी सती नहीं हुई, है, और वो विभीषण की पत्नी बन गई। तो ये निम्न जो वर्ग के लोग होते हैं उन स्थितियों में जो है ये चलता है, इसमें वो दोष नहीं माना जाता। और कलयुग में क्या है, कलयुग में ज़्यादातर शूद्र ही लोग, कल और शूद्र क्या है, कल और शूद्र संभव है, शूद्र हैं लोग, है ना। इसलिए सती प्रथा जो है फिर वो अंग्रेजों ने बंद कराई, राजा राम मोहन राय ने भी बंद कराई अंग्रेजों के ज़माने में। तो ये जो है बहुत बड़ा मतलब कार्य हुआ, बहुत मतलब ये प्रशंसनीय कार्य हुआ कि उस समय स्त्री को धकेल धकेल करके जो है बलपूर्वक उसको पति के साथ जलाया जाता था, बहुत मतलब गलत। क्योंकि उस समय जो स्त्रियां होती थीं तो वो आत्मज्ञान के धरातल पर होती थीं और वो जो है स्वेच्छापूर्वक जो है अपने पति के साथ जो है जलती थीं, अपने शरीर को छोड़ती थीं, तो ये आत्मज्ञान का धरातल था। तो पहले आत्मज्ञान के धरातल पर जो है स्त्रियाँ और बच्चे होते थे, है ना। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो ये आज के हिसाब से बता रहे हैं कि आज के हिसाब से मतलब जो है ये है। और ये फिर ये शिष्टाचार नहीं कहना चाहिए कि भाई ये शिष्टाचार है कि नहीं स्त्री मतलब ऐसा करे, ऐसा नहीं। जैसे महाराज पांडव की मृत्यु हो गई तो कुंती महारानी सती होना चाहती थी, हैं, कुंती और मांत्री दोनों उनकी पत्नियाँ थीं, है ना। लेकिन फिर मांत्री ने ही कुंती से प्रार्थना की कि मैं जो है दो बच्चों की माँ हूँ, आप तीन बच्चों की माँ हैं, तो मैं इतना भार नहीं उठा पाऊँगी बच्चों का, पांच बच्चों का भार मैं नहीं उठा पाऊँगी, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं पति के साथ जाऊँगी और आप जो है बच्चों का भार उठाइए। तो कुंती महारानी के लिए एक बहुत बड़ा एक ये दंड था कि वे महाराज पांडु के साथ वो सती नहीं हुई और उनको जीवित रहना पड़ा, तो वो जीवन उनके लिए बड़ा भार था, वो भार उन्होंने उठाया कुंती महारानी ने। लेकिन जो माद्री थी तो उसने जो है मतलब उसके लिए बड़ा सौभाग्य था कि वो जो है पति के साथ गई और पति लोक में चली गई माद्री। तो मैं कुछ कहना चाहता था, दिमाग से निकल गया। तो कुंती ने जो है इस भार को उठाया, है ना। हाँ, और माद्री ने ये भी कहा, माद्री ने ये भी कहा कि चूंकि मेरे कारण ही पति की मृत्यु हुई है, क्योंकि उनको शाप था कि अगर आप पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, है, तीन दिन ऋषि ने शाप दिया था। तो और महाराज पांडु शाप को जानते थे, लेकिन माद्री के रूप में वो इतने आकर्षित हो गए, आसक्त हो गए कि बताया जाता है काम से जो है मतलब ज्ञान ढक जाता है इतना, है ना। तो काम वासना इतनी प्रबल हो गई कि वो जानते हुए भी जो है उन्होंने क्या किया कि माद्री के साथ सहवास करने की चेष्टा की और शरीर छूट गया उनका। तो माद्री कहती है कि चूंकि मेरे कारण पति ने शरीर छोड़ा है तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं पति के साथ जाऊँ। इस तरह से माद्री ने जो है मतलब क्षति हुई। तो यहाँ पर प्रभु जी तात्पर्य में अंतिम जो वाक्य है वो ये लिख रहे हैं कि रानियाँ सबको जलाने के लिए इसलिए नहीं दे रही थीं क्योंकि वे अपने पति के शव के साथ मरने से डर रही थीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हमारे पास थोड़ा समय है, नौवे समाप्त करना है, ये 7 मिनट ज़्यादा हुआ था 8 बजे, तो 7 मिनट हम और ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी,
जो मंदोदरी थी वो जो आदर्श स्त्रियाँ हैं, आदर्श पत्नियाँ, उनमें से एक मानी जाती हैं, आपने बताया कि
अच्छा प्रश्न है, इनका अच्छा प्रश्न है कि मंदोदरी को सती माना जाता है, 7 सतियों में एक योगी है, सती है मंदोदरी, ठीक कह रहे हैं, अच्छा प्रश्न है इनका। रावण की मृत्यु के बाद वो जो है सती नहीं हुई है, जबकि वो सती स्त्रियों में उसका नाम आता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि सती मतलब वैसे तो सती नाम जो है पहले इसलिए नहीं होता था, किसी स्त्री को सती नहीं कहा जाता था कि वो पति के साथ को जल करके शरीर छोड़े तो वो सती, अभी तो यही बोलते हैं भाई सती हो गई, है ना। तो सती जो है शब्द का प्रयोग जब कोई स्त्री पति के साथ जलती है तो सती शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि सती ने देह त्याग किया था, जब शिव जी का अपमान हुआ, शिव जी का अपमान हुआ तो सती ने देह त्याग किया था, वो तो आप लोगों को पता है, दक्ष की पुत्री जो सती थी उन्होंने अपना देह त्याग किया, तब से सती शब्द का प्रयोग होने लगा। कोई भी स्त्री अगर शरीर जलाती है अपने पति की मृत्यु के बाद, है ना, लेकिन सती ने तो अपने शरीर को नहीं जलाया था कि शिव जी की मृत्यु हो गई इसलिए, लेकिन शिव जी का जो अपमान हुआ, दक्ष ने जो अपमान किया शिव जी का, वो भी मृत्यु के समान माना जाता है। तो सती ने अपना देह त्याग किया था, अपने शरीर को जलाया था, तो हम सती बोलते हैं। लेकिन वैसे सामान्य रूप में सती शब्द का जो प्रयोग है वो इस तरह से होता है, जैसे साधु है? किसी पुरुष को आप कहते हैं साधु, तो स्त्री को क्या बोलते हैं? साध्वी, है ना। इसी प्रकार किसी पुरुष को आप बोलते हैं सत पुरुष, सत्संग, है ना, तो स्त्री को क्या बोलते हैं? सती, है ना। तो सती, किसी भी स्त्री को सती अगर बोला जाता है तो इसका मतलब है कि जो साधु हो, साध्वी या सती, सती साध्वी, है ना। तो ये सब जो है स्त्री के लिए इसलिए प्रयोग किए जाते हैं। और साधु का मतलब क्या है? जो भगवान का भक्त हो, है ना। तो स्त्री भी जो है सती वो है जो भगवान का, भगवान की भक्त हो, है ना। तो मंदोदरी ने रावण के कार्य का विरोध किया था, हाँ, रावण को समझाया था कि तुम राम से विरोध ना करो, सीता को वापस दे दो, है ना, इसलिए वो सती मानी गई, आप समझे ना, है ना। बल्कि अध्यात्म रामायण में भी आता है कि रावण ने जो है मंदोदरी से ये कहा था, मंदोदरी से कहा था कि अब मुझे तो मरना है, है? मुझे तो मरना है, तो तुम अब मेरा एक काम कर देना, मेरा एक काम ये कर देना कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो सीता को भी मेरे साथ जला देना और तुम भी जल जाना अपने मेरे साथ, उसने कहा। तो मंदोदरी ने क्या उत्तर दिया? मंदोदरी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, रावण से ही उसने मतलब ऐसे मना नहीं किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, शिष्टाचार के अनुसार वो ठीक नहीं होता, लेकिन उसने कहा कि अगर आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो मेरी आप बात मानिए, मैं आपका साथ दूंगी, अगर आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं आप सीता को वापस कर दीजिए राम को, और विभीषण को लंका का राजा बना दीजिए, और हम दोनों जंगल में जाएंगे तपस्या करने के लिए, तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, आप सुन रहे हैं। मंदोदरी ने कहा कि आप सीता को वापस कर दो, विभीषण को राजा बना दो लंका का, और हम दोनों जंगल में जाएंगे तपस्या करने के लिए, मैं इसलिए आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, धर्म के रास्ते, अधर्म का साथ नहीं दूंगी। तो वैसे मना नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब यही था कि अगर तुम ऐसे मारे जाओगे तो मैं सती नहीं होऊंगी तुम्हारे साथ, मंदोदरी ने कहा। आप समझे, तो मंदोदरी को सती इसलिए कहा गया, एक विभीषण थे जिन्होंने विरोध किया था, है ना, और रावण ने फिर जो है मतलब त्याग दिया और विभीषण छोड़ दिया। स्त्री के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि पति का ऐसे विरोध करे कि वो जो है मतलब पति को वैसे वो छोड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी पति का त्याग तो कर ही दिया उसने। विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया तो मतलब वैसे भी छोड़ दिया, लेकिन स्त्री जो है पति का त्याग कर दे, अगर वो पापी है तो पति का त्याग कर दे, लेकिन वो ऐसे त्याग नहीं कर सकती है क्योंकि समाज में उसको फिर और कोई दूसरा स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन त्याग, पति का त्याग करने का यही मतलब है कि उसके कार्य में सहयोग ना दे, जहां तक हो सके अपनी शक्ति के अनुसार विरोध करे। आप समझे, तो पति जो है अगर पापी है तो पत्नी को जो है पति का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे त्याग नहीं कर सकते, भी शरीर से त्याग दे, कहां जाएगी उसको, कहां आश्रय मिलेगा। तो मंदोदरी ने रावण का त्याग कर दिया था इसलिए सती। आप समझ रहे हैं, हाँ जी,
ये अगर वो सती है तो उन्होंने विभीषण से शादी कैसे कर ली?
विभीषण से शादी कैसे की? क्योंकि ये निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं तो उनमें ये दोष नहीं माना जाता, ठीक है।
शास्त्र उनको क्यों सती है अगर ऐसा क्रिया?
हाँ, ये अनुमति है और भगवान राम की अनुमति थी इसमें जो है आज्ञा थी। इनको राक्षसों के लिए जो है भगवान राम ने केवल एक चीज मना की थी कि तुम लोग मनुष्यों को नहीं खाना मनुष्यों को नहीं खाना। तो विभीषण ने फिर ये समस्या पैदा की कि हम मनुष्यों को तो नहीं खाएंगे, और जब मनुष्यों को पता चलेगा कि हम लोग मनुष्यों को नहीं खाते हैं और आपने पुल बना दिया है समुद्र में, तो अब मनुष्य लोग यहाँ आएंगे हमें तंग करेंगे। तो भगवान राम ने विचार किया कि ठीक कह रहे हैं, तो भगवान राम ने जो है पुष्पक विमान के ऊपर चढ़ करके और आकाश मार्ग से दो बाण मार करके पुल के तीन टुकड़े कर दिए। आप समझे, तो पुल के तीन टुकड़े कर दिए, तो एक हिस्सा तो जमीन में मिला रहा भारत की जमीन में, दूसरा हिस्सा लंका की जमीन में, और बीच में काफी बड़ा गैप हो गया कि मनुष्य नहीं आएंगे, है ना। तो मनुष्यों को तुम नहीं खाओगे, बाकी खाओ हाथी शेर इन सबको खाओ, है ना। तो उनको जो है मना नहीं कर सकते, तुम लोग मांस नहीं खाओगे। आप सुनिए ना, ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ बोलिए, बिना माइक के बोलो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे प्रभु जी बताया जाता है कि अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं, जैसे सुसाइड का केस होता है तो मुक्ति नहीं मिलती, तो सती प्रथा को किस तरीके से एप्रोप्रिएट माना जाता है?
हाँ, ये जो है ये शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है, शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी भी जो है अगर इसी विचार से वो जो है अपने शरीर को छोड़ती है, कि जो मेरा पति है मेरा जन्म जन्म हाँ मेरा ये संबंध बना रहे उसके साथ में, तो जहाँ पति जाता है वहाँ उसकी पत्नी भी जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है सर। हाँ जी, आपका प्रश्न। हाँ, हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि राजा दशरथ ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी कोई पत्नी सती नहीं हुई, दशरथ जी की पत्नी कोई भी पत्नी सती नहीं हुई, इसका कारण इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि मतलब फोर्स नहीं किया जाता था, किसी स्त्री को फोर्स नहीं किया जाता था, और इनका जो है मतलब माताओं का राम के प्रति इतना अनुराग था, इतना प्रेम था कि वे जो है जीवित रहना चाहती थी, है ना। तो ऐसे में फिर ये भी होता है कि पति की मृत्यु के बाद जो पुत्र है उसकी सुरक्षा में स्त्री रहे। पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो या तो अपने पुत्र की सुरक्षा में वो रहे वृद्धावस्था में, मतलब बचपन की अवस्था में पिता की सुरक्षा में रहे, जवानी की अवस्था में पति की सुरक्षा में रहे, और वृद्धावस्था में अगर पति चला जाए संन्यास ले ले या फिर पति की मृत्यु हो जाए तो अपने पुत्रों की सुरक्षा में रहे। हाँ, तो इसका मतलब यही भी है कि फोर्स नहीं होता था, कोई भी स्त्री जो है अपनी इच्छा के अनुसार अगर पति के लोक में जाना चाहे तो वो जा सकती है। ठीक है ना? हाँ जी, आपका प्रश्न।
धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति वैदिक संस्कृति में
जोर से
वानप्रस्थ,
बोलो, जोर से।
वैदिक संस्कृति में जब वानप्रस्थ रहता था तो वानप्रस्थ में भी पत्नी साथ में आती थी, तो उस दौरान पत्नी की जो उत्तरदायित्व जिम्मेवारी पति उठाता था, जंगल में जा रहे हैं तो उसके रक्षा का
हाँ,
दायित्व थी।
जब पति वानप्रस्थ में ज्यादा था, अभी मैं पूरा प्रश्न आपका सुन नहीं पाया लेकिन शायद मैं उत्तर दे रहा हूँ। जब वानप्रस्थ, क्षत्रियों के लिए तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ तो वानप्रस्थ तीन ही आश्रम है, संन्यास नहीं है क्षत्रियों के लिए, है ना? देखिए, ब्राह्मणों के लिए चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। क्षत्रियों के लिए तीन ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ। वैश्यों के लिए दो ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, और शूद्रों के लिए एक ही आश्रम है, क्या? गृहस्थ। तो क्षत्रिय जो है, जो राजा होते थे, तो वो अगर वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे तो वानप्रस्थ आश्रम में उनकी पत्नी को ये चुनाव होता था कि वो पति के साथ जाना चाहे तो जाए, और अगर अपने पुत्रों की सुरक्षा में रहना चाहे तो रहे। पति की पत्नी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं होता था कि वो वानप्रस्थ आश्रम में पति का साथ दे। जैसे महाराज पांडु भी जो है, जब उनको शाप मिल गया तो वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा वन में, प्रस्थान कर रहा हूँ, वानप्रस्थ ले रहा हूँ मैं। लेकिन वो कुंती और मात्री थी, वो दोनों मतलब सतियाँ थी, तो उन्होंने जो है मतलब कहा कि नहीं, हम आपके साथ जाएंगे। तो महाराज पांडु के साथ में वो भी गए। तो पत्नी का जो है ये अपना चुनाव होता था कि वो पत्नी के साथ जाना चाहे या पुत्रों की सुरक्षा में रहना चाहे, ऐसा था। ठीक है ना? तो वो तो यही है कि अगर स्त्री जो है मतलब बहुत समर्पित है और पति बहुत शुद्ध भक्त है तो वो जो है जीने मरने में हमेशा साथ देगी, है ना? तो जैसे अर्ची महारानी, तो महाराज पृथु जब वानप्रस्थ आश्रम में गए तो उनके साथ में तो पूरा साथ दिया, और जब पृथु महाराज ने शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने उनके शरीर को जलाया और स्वयं भी चिता में बैठ गई और वैकुंठ चली। तो वैकुंठ में भी जो है वो गए, और पति पति पत्नी के रूप में गए, तो वैकुंठ में भी जो है पृथु महाराज और अर्ची महारानी जो है पति पत्नी के रूप में गए वैकुंठ में भी। ठीक है, धन्यवाद। गिरिधराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा मणि देव की जय। श्री श्री कृष्ण नाम भगवान की जय। ओम।